नमस्कार, आज हम अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL पर बेस्ट मेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है 14 जुलाई 2025 वाली, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद यह है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से AGEL का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आगे के क्या प्लान्स हैं और इसमें रिस्क क्या क्या हैं, इनको समझा जाए।
बिल्कुल, AGEL भारत की रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी योजनाएं भी काफी महत्वाकांक्षी हैं। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या खास निकल कर आता है।
तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस से। रिपोर्ट तो यही कहती है कि AGEL भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी है। 14 गीगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी ऑपरेशनल है और इनका मेन फोकस लंबे समय के पावर परचेज एग्रीमेंट मतलब PPAs पर रहता है।
हाँ बिल्कुल, ये उनकी आय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 86-90% जो कैपेसिटी है वो 25 ईयर के फिक्स टैरिफ PPAs के तहत है। इससे एक तरह से रेवेन्यू विजिबिलिटी बनी रहती है। और जहां तक महत्वाकांक्षा की बात है तो लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट का है। इसमें गुजरात का जो खावड़ा रिन्यूएबल पार्क है 30 गीगावाट वाला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
50 गीगावाट, ये तो सच में बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसे पाने के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कितनी मजबूत है? रिपोर्ट मुनाफे और मार्जिन के बारे में क्या कहती है?
हाँ, तो रिपोर्ट ये बताती है कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का जो पेट है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 59% बढ़कर करीब 2001 करोड़ रुपए हो गया है और EPTA मार्जिन भी काफी अच्छा है, लगभग 80%। ये दिखाता है कि ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी काफी एफिशिएंट है। ये मार्जिन सेक्टर के हिसाब से तो बहुत ही ऊंचा है।
सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, 80% मार्जिन। पर क्या कोई चिंता वाली बात भी है रिपोर्ट में?
हाँ, चिंता की बात है और वो काफी बड़ी है। रिपोर्ट इस पर काफी जोर देती है, वो है कंपनी पर कर्ज का भारी बोझ। ये करीब 80,000 करोड़ बताया गया है। इसके चलते डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 6.6.1 के आसपास पहुंच गया है।
6 गुना से ज्यादा कर्ज इक्विटी के मुकाबले?
जी हाँ, आसान शब्दों में कहें तो कंपनी की अपनी पूंजी के मुकाबले कर्ज 6 गुना से भी ज्यादा है। इसे मतलब काफी रिस्की माना जाता है और इस कर्ज पर ब्याज चुकाने का बोझ भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कंपनी फिलहाल डिविडेंड नहीं दे रही, सारा पैसा वो वापस बिजनेस बढ़ाने में ही लगा रही है।
इतना भारी कर्ज, तो फिर कंपनी का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा और भविष्य की जो योजनाएं हैं, जैसे FY26 में 5 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ने की बात, उसके लिए 31,000 करोड़ का निवेश, ये पैसा कहां से आएगा?
ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की जो आखिरी तिमाही थी Q4, उसमें भी रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखी थी। और जहां तक FY26 के 31,000 करोड़ रुपए के निवेश का सवाल है, रिपोर्ट में मैनेजमेंट का दावा है कि ये पूरी तरह से फंडेड है, मतलब इसके लिए पैसों का इंतजाम हो चुका है, ऐसा उनका कहना है।
अच्छा, ये तो एक राहत की बात हो सकती है अगर फंडिंग सिक्योर है।
हाँ, और इसके अलावा रिपोर्ट एक और बड़े अवसर की तरफ इशारा करती है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन में विस्तार। AGEL के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
अच्छा, तो एक तरफ इतना भारी कर्ज, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स, ग्रीन हाइड्रोजन का भी एंगल है। इन सब के बीच बाजार कैसे देख रहा है कंपनी के शेयर को? वैल्यूएशन, टेक्निकल लेवल्स, इस पर रिपोर्ट क्या कहती है?
देखिए, शेयर में उतार चढ़ाव तो काफी रहा है। जब रिपोर्ट आई थी मतलब मिड जुलाई 2025 में, तब शेयर करीब 1,000 रुपए के आसपास था। रिपोर्ट 1,000 को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मानती है, मतलब वो लेवल जहां से शेयर को कुछ सहारा मिल सकता है, और 1,400 रुपए को एक रेजिस्टेंस लेवल जहाँ शायद बिकवाली का दबाव देखने को मिले।
और वैल्यूएशन के लिहाज से मतलब अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों की तुलना में ये महंगा है, सस्ता है, कैसा है?
वैल्यूएशन तो काफी ऊंचा है। रिपोर्ट साफ कहती है कि AGEL अपने पीयर्स जैसे टाटा पावर रिन्यूएबल्स या रिन्यू पावर, इनके मुकाबले काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स वो करीब 100 गुना है और EV/EBITDA रेशियो भी लगभग 25 गुना है। ये दोनों ही काफी ऊंचे माने जाते हैं।
100 का PE, इतना ज्यादा?
हाँ, ये दिलचस्प है कि इतने फाइनेंशियल रिस्क के बावजूद बाजार इसे इतना हाई वैल्यूएशन दे रहा है। रिपोर्ट का इशारा है कि शायद निवेशक इसे सिर्फ एक क्या कहते हैं यूटिलिटी कंपनी की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक तेजी से बढ़ने वाले ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हैं।
ये एक अलग नजरिया है। तो अगर हम पूरी रिपोर्ट को संक्षेप में देखें, स्वॉट जैसा कुछ, तो कंपनी की मुख्य ताकतें और कमजोरियां क्या नजर आती हैं?
बिल्कुल, रिपोर्ट के हिसाब से ताकतें हैं मार्केट लीडरशिप, मतलब नंबर वन पोजिशन, अडानी ग्रुप का सपोर्ट, लंबे PPS से आय की सुरक्षा और एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पाइपलाइन। वहीं कमजोरियां भी स्पष्ट है, सबसे बड़ी तो यही, बहुत ज्यादा कर्ज, लगातार बाहर से फंडिंग की जरूरत, और ग्रुप लेवल पर जो गवर्नेंस से जुड़ी चिंताएं रही हैं वो भी एक फैक्टर है।
सही, और अवसर और जोखिम, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
अवसरों में तो सबसे बड़ा है भारत का बढ़ता रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट, दूसरा जैसा हमने कहा ग्रीन हाइड्रोजन का उभरता हुआ क्षेत्र, और जोखिमों में जाहिर है सबसे पहले कर्ज का बोझ, फिर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में अगर देरी होती है वो एक रिस्क है, और सरकारी नीतियों में कोई बदलाव आता है तो उसका भी असर पड़ सकता है।
तो कुल मिलाकर बेस्टमेट की रिपोर्ट AGL को रिन्यूएबल सेक्टर में एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर तो देख रही है, जिसमें ग्रोथ की संभावनाएं अपार हैं, लेकिन ये सफर कह सकते हैं कि बड़े वित्तीय जोखिमों से भरा है।
बिल्कुल सही कहा, इसीलिए रिपोर्ट ने जो शेयर के लिए लक्ष्य दिए हैं, 1 साल में 1400 रुपए, 2 साल में 2100 रुपए और 3 साल में 3000, वो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स को कितनी अच्छी तरह से लागू कर पाती है, और सबसे जरूरी, अपने इस भारी कर्ज को कैसे मैनेज करती है।
तो ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए एक अहम सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या अडानी ग्रीन अपनी विशाल हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं और उनसे जुड़े भारी वित्तीय जोखिमों के बीच एक संतुलन बना पाएगी, या फिर ये जो कर्ज का पहाड़ है ये कहीं उसकी रफ्तार पर ब्रेक न लगा दे। सोचने वाली बात है।